बड़ी परेशानी का सामना यहां पे करना पड़ा, और ये जो बेचारे नए प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट जो हुए हैं गैब्रियल अटल, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल का वक्त आ गया, क्योंकि वही कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो सर मुंडा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये इनके जी आ गया। फार्मर्स कहते हैं जी कि ना तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब बिल्कुल कहानी जिते भी दी थी तुसी चुको ना, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान है भी बेचारा बदनाम है। फार्मर्स कहते हैं जी कि ये जो एमपीज हैं हमारे, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं, इसके बाद ये कभी फार्म में कदम रखने की जो है वो इनको तौफीक नहीं होती, और ये कभी भी आके हमारा हाल जो है वो पूछते नहीं है, वो कभी भी नहीं पूछते हैं कि हमारी यहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या हमको यहां पर जो है एग्रीकल्चरल मेजर्स लाने की जरूरत है। हालांकि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल, उन्होंने कहा था कि कुछ एग्रीकल्चरल मेजर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब फार्मर्स के साथ उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिमांड्स हमने डाली थी एग्री रिफॉर्म्स में वो आपने फुलफिल नहीं की है, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं। एज अ रिजल्ट ओवर द वीकेंड 15,000 जो पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो यहां पे डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि सारे का सारा रास्ता खासतौर पे पेरिस के डिफरेंट एयरपोर्ट्स को जो जाता है उसके ऊपर थे, और यहां पे जो रंगेस मार्केट है जहां पे के फ्रेश फ्रूट सप्लाईज मिलते हैं वहां पे, और भी जो मेजर जितने भी थी जगह उधर यहां पे पुलिस का प्रेजेंस बहुत सारा नजर आया। इन्होंने जो थे फार्मर्स, उन्होंने प्लैक कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें कि फ्रेंच के अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब है नो फूड विदाउट फार्मर्स, एंड ऑफ अस वुड मीन फैमिन फॉर यू। तो बस ये काफी जो है वीकेंड से ही चल रहा है हंगामा, तो अब आज तो काफी परेशानी रही क्योंकि आज जाहिर है कि वर्किंग डे था। डिसीजन टू सस्पेंड यूनाइटेड नेशंस का जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी एजेंसी का एड बाय वेस्टर्न कंट्रीज है, उसको आज यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ एंटोनियो गुतरस ने उन्होंने बड़ा बुरा समझा। उन्होंने कहा जी कि ये UNRWA ये जो है ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी यहां पर जो लूमिंग फैमिन है गाजा के अंदर, उसके लिए UNRWA के जो चीफ हैं फिलिप लजार्नी, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा ही इन्होंने गलत काम किया है, ये इनको जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनको कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने के एड रोकी है उनको रोकना नहीं चाहिए था। इनके तकरीबन जो है UNRWA के 13,000 एम्प्लॉयज गाजा के अंदर काम करते हैं, जो कि एक मेन की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की जो इनको अभी तक रिलीफ जो है वो दे रही थी। 2.3 मिलियन पीपल जो है अकॉर्डिंग टू UNRWA इनके फूड और शेल्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वेस्ट ने ये एड जो है इसराइल के एलिगेशंस के ऊपर जो है कट की है, जिसमें कि उसने कहा था कि 9 out of 12 UNRWA स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो जो हमास का अक्टूबर 7 का अटैक है उसके अंदर शामिल थे। हालांकि इसके कोई उनके पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल गाजंस को और सताने के लिए शायद मे भी हो सकता है कि ये एक उन्होंने और भी बात बनाई हो। अभी तक जब से अक्टूबर 7 से वॉर शुरू हुई है तो UNRWA के 152 स्टाफ मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, 145 इनकी जो फैसिलिटीज हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, और ये डैमेजेस और ये सारा कुछ जो है उससे पहले भी चल रहा था। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स इन 1922 44.3% ऑफ UNRWA का जो टोटल प्लेज था ऑफ 1.17 बिलियन वो यूरोपियन यूनियन से आया था, जो कि जिन्होंने के दिया था $520.3 मिलियन। इसमें ज्यादातर जो डोनेशंस आती थी तकरीबन 61.4% से वो आती थी US, जर्मनी, EU और स्वीडन से, जिन्होंने कि अब अपनी डोनेशंस रोक दी हैं, जिसके के ऊपर आज एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो लोगों को और कुछ लोगों के लिए सबको नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर आज जो है काफी शोर मचा है। अमेरिका के अंदर जनाब काफी स्नब दिया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। मुस्लिम अरब अमेरिकन लीडर्स जो हैं मिशिगन के अंदर, उनको बुलाया गया था बाइडेन साहब के से मिलने के लिए, लेकिन उन सब लीडर्स ने जो है मीटिंग से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, जो कि इनकी बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज हैं। हालांकि बाइडेन साहब जो हैं वो बात तो बीच बीच में करते हैं कि जी हम मेरा बड़ा प्यार है मुसलमानों के साथ, ये है वो है, लेकिन जो अब अरब मुस्लिम अमेरिकन हैं वो बिल्कुल इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब से ये हमास की अक्टूबर 7 से वॉर शुरू हुई है तब से ये बाइडेन साहब को कह रहे हैं कि आप सीज फायर की तरफ जाएं और इसराइल को इतना सपोर्ट ना करें और ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है इनको ना दें, लेकिन बाइडेन साहब को बिल्कुल उसके ऊपर वो कहते हैं जी नहीं वो करेंगे। तो आज वो जिस वक्त मोर्चा निकाल रहे थे तो डेमोन्स्ट्रेटर्स चांट कर रहे थे जीनोसाइड जो सीज फायर, तो वो इस चीज को अच्छा नहीं समझ रही। जो कैंपेन मैनेजर हैं इनकी बाइडेन साहब की जूली शावेज रॉड्रिक्स, वो जो हैं वो यहां पे मिशिगन में आई थी और वो चाहती थी कि यहां पे डेट्रॉइट के ऑफिशियल से मिले और 10 से 15 जो हैं मुसलमान अरब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी मिले, जिन्होंने के मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारी डिमांड बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, हम सीज फायर चाहते हैं। ये जो जीनोसाइड चल रहा है बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है गाजा के अंदर, इसको रोकने के लिए, और वो जब तक नहीं रोकेंगे हम इनसे नहीं मिलेंगे। और ये जो गवर्नमेंट है ये वॉच कर रही है लाइव स्ट्रीम जीनोसाइड, तो हम इसका साथ नहीं देंगे। डेट्रॉइट और डियरबॉर्न जो है ये दे हैव लार्जेस्ट अरब पॉपुलेशन, अरब मुस्लिम पॉपुलेशन, और जो मिशिगन स्टेट है वो तो आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट होती है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर। बाइडेन साहब जो है बड़ा नैरोली विन किए थे ट्रंप साहब से इन 2020 इलेक्शंस, और ये इसलिए बड़ी ही क्रिटिकल है। कहा जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने बाइडेन साहब को कहा है कि यू नीड टू शो अ मोर सिंपथेटिक व्यू टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, लेकिन जाहिर है कि वो बार बार कहते हैं कि हम जी खड़े हुए हैं इसके साथ, इसराइल के साथ, दे हैव द राइट टू डिफेंड, और पैलेस्टीनियंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। ईरान के ऊपर जी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं यूएस गवर्नमेंट ने कि जी आपने ये जो अपना ड्रोन अटैक किया है जॉर्डन के अंदर, जिसके अंदर 3 अमेरिकन मिलिट्री के पर्सनल की डेथ हुई है और 3 लोग, बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, उसको ईरान ने कंप्लीटली डिनाई किया है। बाइडन ने और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जो है डेविड कैमरून, उन्होंने ब्लेम किया था ईरान बैक्ड ग्रुप्स को कि जिन्होंने ये सीरिया के बॉर्डर के करीब अटैक्स किए हैं। ईरान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन नसर कनानी जो हैं, उन्होंने आज इरना न्यूज एजेंसी को बताया कि हम बड़ा क्लियरली हमने इनको बताया है कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं रीजन के अंदर जो के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इनकी जो वॉर क्राइम्स और जीनोसाइड ऑफ चाइल्ड किलिंग जायनिस्ट रिजीम है उसके खिलाफ। ये बिल्कुल ईरान का हुक्म नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं है, ये एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन प्रिंसिपल्स एंड प्रायोरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड पीपल। वो कहते हैं जी कि हम इसके अंदर बिल्कुल हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनका जो इन्वॉल्वमेंट है इट इज मोटिवेटेड बाय स्पेसिफिक पोलिटिकल गोल्स, ताकि ये जो कुछ भी रीजन के अंदर चल रहा है उसको रिवर्स कर सके, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम थर्ड पार्टी। ईरान का जो मिशन है टू यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी आज बात करते हुए ईरान ने कहा कि हमारा इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ब्लेम किया यूएस फोर्सेस को, रेजिस्टेंस ग्रुप्स को रीजन के अंदर क्लैश करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि ये इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है जिसके के बारे में यूके और यूएस ने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनका ताल्लुक ईरान के साथ है। ईरान ने कहा जी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो अटैक हुआ था ड्रोन का, ये किया गया था टावर 22 के ऊपर जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है यूएस जो सोल्जर्स हैं उनकी, और जब से गाजा की वॉर शुरू हुई है तो ये पहली दफा ऐसा अटैक हुआ है अमेरिकन इंटरेस्ट पे जिसमें कि इनके 3 आर्मी के जो पर्सनल हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। ठीक है जी। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। आपको पता ही है कि 1400 लोगों की फैसिलिटी है यहां पे और 32 रूम लग्जरी होटल है। यहां पे आप अपने फैमिली के या के बिजनेस के इवेंट्स आप कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823। एंड नान कबो बड़ा आइडियली लोकेटेड है ये 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा के अंदर। अगर आपको इनके साथ ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 4162858191। और जनाब ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट, फैसल चटा साहब होते हैं। अगर आप इनको, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं से भी आप ऑर्डर डालना चाहते हैं तो कॉल कर लें। एक 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में है, एक 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल में है। तो अगर आपको ऑर्डर डालना है तो आप कॉल करें 905-226-2294 पे और आप अपना जो है इनसे बड़े मजे के खाने ले सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान का जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ, फिर से एक दफा सरावान का एरिया, वहां पे फिर से आज कुछ गनमैन जो हैं उन्होंने गोली वाली चलाई और उसमें 9 पाकिस्तानी जो हैं उनकी डेथ हो गई। ये सारा वाकया उस वक्त हुआ जब जो ईरान के ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुलिया जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, और जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपने कंट्रीज के जो एनिमीज हैं उनको बिल्कुल ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे ब्रदरली टाइज जो है उनको डैमेज करें। लेकिन आज फिर से इतनी ज्यादा बात करने के बावजूद भी और उससे पहले भी जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए थे, आज सिस्तान बलूचिस्तान का जो ये एरिया है सरवान में उसमें फिर से अटैक हुए। तेहरान के में जो है पाकिस्तान के अम्बेसडर मोहम्मद मुदस्सर टीपी, उन्होंने एक्स के ऊपर काफी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि ये हॉरिफाइंग किलिंग्स जो सरवान में हुई है, हम उस सिलसिले में ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इन टच हैं, हम सपोर्ट करते हैं बिरीव फैमिलीज को और हम चाहते हैं कि ईरान अपनी फुल कोऑपरेशन हमारे साथ जो है इस सिलसिले में एक्सटेंड करे ताकि पता चल सके ये कौन है। ईरान ने भी ये कहा है, जो प्रोविंस के डेप्यूटी गवर्नर हैं अली रजा मरहमती, उन्होंने कहा जी कि तीन आर्म्ड गनमैन जो हैं वो आए थे और उन्होंने फॉरेनर्स के ऊपर जो है उनके घर में घुस के जो है वो फायरिंग की और फिर उसके बाद सीन से भाग गए। डेफिनेटली हम इसको टेररिस्ट अटैक जो है वो कहेंगे। लेकिन इस स्पीच में फिर से पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि हम अपने ताल्लुकात इन टेररिस्टों की वजह से खराब नहीं करेंगे। लेकिन जनाब अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो ईरान पे अटैक्स करते हैं उनको आप संभालो, तो फिर आप भी जो आपके मुल्क में लोग बैठे हैं आप भी उनको संभालो फिर थोड़ा, क्यों पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं। एक जनाब एफआईआर जो है वो डाली गई है पीटीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ कि उन्होंने कहा जी कि पुलिस के साथ कराची के तीन तलवार एरिया के अंदर अपनी रैली में पीटीआई के ऑफिशियल्स ने हमला किया और पुलिस कहती है जी कि इनको जो है रैली इधर ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी अकॉर्डिंग टू ईसीपी कोड ऑफ कंडक्ट, फिर भी इन्होंने किया। तो जिस वक्त इन्होंने हमारे साथ लड़ाई की तो फिर पुलिस ने इनके ऊपर बैटन चार्ज किया, एरियल फायरिंग की और टीयर गैस यहां पर छोड़ी इनको डिस्पर्स करने के लिए। सेवरल जो इनके पीटीआई के ऑफिशियल थे उनको अरेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू डीआईजी साउथ असद रजा जो है वो कहते हैं जी कि हमारे अपने खुद के भी सात पुलिस ऑफिशियल जो है इन क्लैशेस के अंदर इंजर हुए हैं और इन्होंने जो है केस के अंदर नाम लिया है पीटीआई के खुरम शेर जमान, फहीम खान, सईद अफरीदी और अदील अहमद को कि इन्होंने यहां पे जो है ये क्लैशेस करवाए हैं। इसके अलावा जो लाहौर एटीसी का हमने आपको बताया था कि लाहौर में सनम जावेद को उन्होंने दे दी थी बेल दे दी थी और कहा था कि आप इलेक्शंस लड़ सकती हैं, लेकिन अब उनको फिर से जैसे ही ये आया ऑर्डर उसके बाद उनको फौरन पकड़ लिया गया है। वो इलेक्शंस लड़ने वाली थी मरियम के अगेंस्ट एनए 119 और पीपी 150 से एंड अगेंस्ट सादिक साहब फ्रॉम एनए 120। इसके साथ साथ पीपीपी जो है उसको भी बड़ी जो है वो शिकायतें हैं, उन्होंने आज एक लेटर लिखा है सीईसी के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, उन्होंने कहा जी कि हमारे भी जो वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है लाहौर के एनए 127 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से कि बीबी जरदारी कंटेस्ट कर रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है ताज हैदर, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स के ऊपर उनके वर्कर्स को उठाया जा रहा है। और इसके अलावा पीएमएलएन की जो काउंसलर खालिदा परवीन जो अब पार्ट ऑफ पीपीपी हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है वहां से। तो मतलब काफी लड़ाई झगड़े हंगामे होते रहे यहां पे कराची में तो खास तौर पे और बाकी भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी। इसके अलावा जनाब क्लैशेस हुए हैं पीपीपी और एमक्यूएमपी के साथ भी जिसमें कि एक एमक्यूएमपी का जो वर्कर है उसकी डेथ हो गई है और दूसरा जो है इंजर्ड हुआ है कराची के निजामाबाद नंबर टू एरिया के अंदर। पुलिस कहती है कि इन दोनों वर्कर्स के बीच में यानी कि पीपीपी और एमक्यूएमपी के वर्कर्स के बीच में लड़ाई हुई और उसमें दो जो गाड़ियां हैं उनको भी आग लगाई गई। ये जो यहां से वीडियो आई है इस इलाके से वो ये शो करती है कि पार्टी एक्टिविस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां उठा उठा के मार रहे थे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वहां पर जब एक आदमी को लाया गया जो कि कहा जा रहा है कि एमक्यूएमपी का था, तो हॉस्पिटल ने कहा जी कि ऑलरेडी इसकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि इसके सर में गोली लगी हुई थी। एमक्यूएमपी के राबता कमेटी के जो मेंबर हैं ताहा सिद्दीकी, उन्होंने मीडिया को बताया कि पीपीपी वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर पीपीपी वर्कर्स ने हमारे ऊपर जो है फायरिंग की और पीपीपी चाहती है कि वो सारे के सारे शहर यानी कि कराची के ऊपर थ्रू टेररिज्म कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो मतलब कराची जो है काफी इवेंटफुल रहा जी वीकेंड के ऊपर। ठीक है पायन खुश हो। अच्छा जी बीबी जरदारी साहब जो हैं जो भाई भाई के बड़े फेवरेट जो लीडर हैं आफ्टर मौलाना साहब, उन्होंने कहा है जी कि कुछ पावरफुल लॉबीज जो हैं वो बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन शो करेंगी जिस वक्त मैं जब पावर में आऊंगा और 17 मिनिस्ट्रीज खत्म करूंगा। और पायन खुदा दा ना लो यार, आज ये बात कर रहे थे जैबिस के स्टूडेंट से इस्लामाबाद कैंपस में और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो है चुनो नई सोच को और हम जो है मुल्क के क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पावरफुल लॉबीज जो हैं हमारे खिलाफ काम कर रही हैं और लोगों को अंडर प्रिविलेज रखना चाहती हैं। पायन अपने बारे में की ख्याल है ਲੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੋ ਵੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਚਾਹਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੋ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਕੀ, ਤੋ ਇਸ ਸਭ ਕੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ 17 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਆਪ ਸਾਥ ਦੇ ਤਾਕਿ ਹਮ ਮੁਲਕ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰੇ ਔਰ ਹਮ ਮੁਲਕ ਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਬਹਰਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, BNPM ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ, ਉਨਕੋ ਅਭੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਫੈਬਰੀ 8 ਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਕੋਇਟਾ NA 264 ਮੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀਏ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਹੈਡਡ ਬਾਏ CJP ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਲੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਜੋ RO ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਏ ਥੇ, ਔਰ ਯੇ ਪਲੀ ਡਾਲੀ ਥੀ ਯਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸੀ ਕਾਂਸਟੀਟੁਐਂਸੀ ਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਇਟਾ NA 264 ਸੇ ਇਨਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ RO ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਯੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਯੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਆਪਕੇ ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਸੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਪਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਨੀਤੀ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਕੋ ਅਬ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਔਰ RO ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਨਕੇ ਪੇਪਰਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਕੇ ਉਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਅੱਜ FIA ਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਆਪਨੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਾਲੇ ਹੈ ਯਾ ਵੋ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜੋ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੇ, ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIA DG ਕੋ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨਕੋ ਕਿ ਟੋਰਚਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਰਨ 15 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨਕੋ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਟੋਰਚਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਥੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਜੋ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਦੀਕੀ ਔਰ ਅਸਦ ਤੂਰ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਨਕੋ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਕੋ ਟੋਰਚਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅਲੈਜਲੀ, ADP ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਓਫਿਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਧਰ ਕੋਰਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕੀ 4 ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਡਾਲੀ ਗਈ ਥੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋ ਉਸਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਔਰ FIA ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਤੀ ਹੈ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਸ਼ਰਾਈਂਡ ਇਨ ਆਵਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ FIA ਨੇ ਲਿਸਟ ਡਾਲੀ ਥੀ 47 ਜਰਨਲਿਸਟੋ ਕੀ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਕੀ ਫਾਰ ਅਲੈਜਲੀ ਰਨਿੰਗ ਸਮੀਅਰ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਿਸ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜ ਧਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਜਿਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਥੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੇ। FIA ਨੇ 115 ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਥੀ ਔਰ 65 ਨੋਟਿਸਿਸ ਹਮਨੇ ਸਰਵ ਕੀਏ ਥੇ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਅੱਜ CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਯੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਾਜਦ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 2024 ਮੇ ਆ ਗਏ ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ ਆਇੰਦਾ ਕਭੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਯੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਰਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੋ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੇ ਬਚਾਓ ਸਮੇਵੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਮੇ ਭੁਵੇਸ਼ਨਰ ਮੇ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ 2024 ਮੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੋਟ ਡਾਲਨੇ ਕਾ ਤਾਂ ਕਿ BJP ਸੇ ਜਾਨ ਛੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਇਨਕਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਥਾ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਕੇ BJP ਕੀ ਜੋ ਹੈ NDA ਉਸਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੈ, बीजेपी की जो अलायंस है एनडीए उसको ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी तमाम हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को हाईजैक कर रहा है और हर किसी को नोटिसेस देता जा रहा है और लोगों को डरा रहा है कि अगर तुमने हमें ज्वाइन ना किया और उनको ना छोड़ा तो फिर हम तुमसे निबट लेंगे। वो कहते हैं जी कि इस तरह के जो कावर्ड्स हैं वो आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को क्या बचा सकते हैं। इसके अलावा जब नीतीश कुमार साहब के जाने पर उन्होंने कहा जी कि इंडिया अलायंस बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है, हम बाकी के जितने भी अलायंस के मेंबर्स हैं हम यूनाइटेड हैं और हम बीजेपी को हर जगह पे डिफीट करने का करेंगे। इसके अलावा ओडिशा में थे तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के ऊपर भी उन्होंने काफी सारे एतराज किए। उन्होंने कहा कि इनका जो बाप था वो तो नेहरू जी की आइडियोलॉजी के ऊपर चलता था लेकिन ये जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और इसलिए इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर बिल्कुल जो है ओडिशा का बेड़ा गर्क कर लिया है तो लिहाजा आप इनको अब ना दें। कांग्रेस जो है वो असल में तीसरी पार्टी है ओडिशा में, नंबर वन के ऊपर बीजेडी है जो कि हमेशा ज्यादातर जीतती है और उसके साथ उसकी अलायंस में जो बीजेपी है वो फिर जीतते हैं और तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इधर जो है ओडिशा के अंदर कुछ जीता जाए सीट्स जो हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यहां पे जो कुछ भी ओडिशा के अंदर डेवलपमेंट आई है वो कांग्रेस ने की है, मोदी जी जब से आए हुए हैं यहां पे कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ और अगर हुआ है तो मुझे बताओ क्या है। तिपाहन उठे भी काफी जमा है। अच्छा जनाब, आज न्यू दिल्ली के अंदर जो है सैनिटेशन के जो रिलेटेड वर्कर्स हैं उन्होंने आज मोर्चा निकाला हुआ था और आज उन्होंने अपने सर जो थे वो शेव किए हुए थे कुछ ने और कुछ लोगों ने रुमाल बांधे हुए थे, बहुत सारी औरतें भी थीं और वो आज उन्होंने एक फेक फ्यूनरल निकाला हुआ था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जिसमें कि जाहिर है कि उनकी एफीजी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हमारे हालात बहुत ही खराब हैं, हमें जो है तनख्वाहें वक्त पे दी नहीं जाती हैं। पहले तो जो ये कंपनी है ग्लोबल वेंचर्स जो कि जिसका के काम है इन लोगों को हैंडल करना सैनिटरी वर्कर्स को और इनको पैसे देना, वो जो है हमें ना तो पैसे देती है, पहले हमें 7 या 10 तारीख को मिल जाते थे लेकिन अब हमें वो भी नहीं मिलते हैं। इनकी टोटल तनख्वाह जो है पर पर्सन 17,000 पर मंथ है, वो कहते हैं जी कि इसमें क्या होता है लेकिन वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलता है। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा जी कि हम आपके सारे कंसर्न्स का ख्याल करेंगे लेकिन सिर्फ मुद्दा आज का जो ये मोर्चा निकला था दिल्ली के अंदर वो सिर्फ पेस का नहीं था, सैलरीज का नहीं था, इसमें बहुत सारी जो औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही थी उनका कहना है जी कि ये जो ग्लोबल वेंचर जो कंपनी है जो कि हमको काम देती है वो बहुत सारे सेक्सुअल फेवर्स भी मांगती है अनमैरिड औरतों और विडोज जो हैं उनसे और वो कहती हैं अगर तुमको काम चाहिए तो ये सेक्सुअल फेवर देना पड़ेगा वरना तुम्हें काम नहीं मिलेगा, अलेजली उन्होंने ये कहा। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ये जो हॉस्पिटल जिसके लिए ये काम करते हैं उसकी भी कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है जिसको कि ये औरतें जाके कंप्लेंट कर सकती हैं जिसकी की वजह से ये एलिगेशंस जो हैं वो उनको प्रूव किया जा सकता है। वो कहते हैं जी कि दिल्ली की पुलिस जो है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है और हम जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि हम ना सिर्फ इस हॉस्पिटल को बल्कि सारे इलाके को भी इंश्योर करते हैं कि ये इधर जो बुरारी हॉस्पिटल का एरिया है वहां पे सफाई रहे तो हमारा कोई ख्याल नहीं किया जाता है, तो अब इन्होंने 10 डेज स्ट्राइक शुरू की है और वो कहते हैं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी मांगी जाएंगी और जब तक ये कंपनी सेक्सुअल फेवर्स लेना बंद नहीं करेगी औरतों से उस वक्त तक हम काम फिर से शुरू नहीं करेंगे। ते पायन ये देख लो, वैसे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पीपल और वैसे भी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब वो तो कहते हैं मैं बहुत सुधार लाया हूं, ते पायन फिर अगर सुधार वाकई अगर किसी वैसे लाए हो, नुक्कड़ के ऊपर इन्होंने क्लिनिक खोले हैं, काफी लोगों की जो बिजली है वो माफ कर दी है, काफी कुछ वैसे काम किया है, ते पायन ही ना गरीब लोगों का भी फिर तुसी सोचो व्हाट इज दिस, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। और जनाब वीकेंड के ऊपर हुए फिल्म फेयर अवार्ड 2024 और आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि ये जो हुए फिल्म फेयर अवार्ड इन गांधीनगर गुजरात में, इसमें शाहरुख खान की किसी एक फिल्म को भी, ना जवान को और ना पठान को कोई अवार्ड मिला, ना शाहरुख खान को मिला, ना उनके बनाने वाले किसी फिल्म वाले को मिला। इसमें जो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का जो था, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द बेस्ट एक्टर जो था वो मिला 12th फेल को के में जिसने काम किया था विक्रांत मस्से ने, उसको मिला। रणवीर कपूर को एनिमल के लिए मिला बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी। बेस्ट फिल्म पॉपुलर जो थी वो रही 12th फेल। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के लिए जोरम रही। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने 12th फेल बनाई थी वो। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, फुल लिस्ट जो है आप जाके देख सकते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की उस पर। लेकिन बहुत ही हैरत हुई कि शाहरुख खान की फिल्मों ने तो बड़े लंबे लंबे करोड़ खींचे लेकिन कोई उनको नॉमिनेशन नहीं मिला।
अमेजिंग
यस ओके। अच्छा जनाब, एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें के देखा जा रहा है कि राहत फतेह अली खान साहब एक जो बच्चा है उसको बहुत बुरे तरीके से अपने जूते से जो है वो पीट रहे हैं, फिर उसको थप्पड़ मार रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वो बोतल किधर गई। अब जब उन्होंने बोतल का पूछा तो लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई ये मार पीट रहे हैं और बोतल कौन सी जो है उसके से पूछ रहे हैं। उसके बाद जी फिर ये सोशल मीडिया पे आए और इन्होंने बड़ी माफी मांगी। इन्होंने कहा जी कि ये एक पर्सनल मैटर है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम है नवीद हसनैन। उस वीडियो के अंदर जिसमें ये माफी मांग रहे हैं उसी वीडियो के अंदर हसनैन भी नजर आ रहे हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है मेरे बाप की तरह है, मेरे उस्ताद हैं, ये हमसे प्यार भी बहुत करते हैं और जो किसी जिस किसी ने भी ये वीडियो को लीक किया है वो ब्लैकमेल कर रहा है और इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है वो। और असल में बोतल क्या थी, वो कहते हैं जी कि ये बोतल इन्होंने मुझे दी थी संभालने के लिए मगर मैंने उसको घुमा दिया, उसके अंदर एक पीर साहब का दम किया हुआ पानी था। अब कौन सा पानी था वो पता नहीं है और किस पीर ने दिया था वो भी पता नहीं है, तो बहरहाल वो मैंने मिसप्लेस कर दिया था तो इसलिए जो है फिर उन्होंने। लेकिन लोगों ने बहुत आज जो है बैश किया राहत फतेह अली खान साहब को कि तुम अपना स्टेचर देखो और तुम कैसे जूतों से और थप्पड़ जो है वो एक बच्चे को जो है मार रहे हो। बहरहाल जी बच्चे भी आजकल बेशरम हो गए। पीर साहब का पानी सी, हाँ पता नहीं केड़ा पीर सी हो इतना इम्पोर्टेंट पानी था जिसके लिए जूतों से मार पड़ी है। और जनाब बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले था। ग्रैंड फिनाले पे जो सलमान खान साहब जो थे स्टेज पे अपने भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ नजर आए। यहां पे भारती जो थी वो अपना कॉमेडी वो कर रही थी, दे रही थी, सेगमेंट दे रही थी। उसमें भारती ने इनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा ये जो अभी अरबाज की नई शादी हुई है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सलमान, तुम क्या जो है अपने दोनों भाइयों को क्या एडवाइस देते हो, दोनों की पहले डिवोर्स हुई फिर अब दोनों ने शादियां की। तो उसमें सलमान ने कहा कि मेरे दोनों भाई मेरी एडवाइस लेते नहीं है, लेते तो ये शादी नहीं करते तो उसमें जाहिर है कि लोग जो है वो बड़ा हंसे हैं। एंड जनाब वीकेंड के ऊपर जो टेनिस के लवर्स हैं उन्होंने तो जो स्टनिंग गेम देखी है ना सिनर ने, वो सिन क्रिएट किया जैनिक सिनर 22 इयर्स का सिर्फ ये लड़का है, उसने डिफीट किया रशिया के डैनियल मेडवेडेव। बहुत ही सख्त किस्म का मैच था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का और 5 सेट्स थे और पहले जो 2 सेट्स थे वो तो ये हार गया, उसके बाद जो बाकी के 3 सेट्स थे 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से इसने जीता। 3 घंटे का ये जो था फाइनल था। ही हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन सिंस एड्रियानो पेनाटा इन 1976 टू विन अ ग्रैंड स्लैम। इससे पहले आपको हमने बताया गया कि सेमी फाइनल्स में इसने जोकोविच को भी हराया था। और
वेरी यंग
22 ईयर्स ओल्ड। और वो कहते हैं जी कि अभी तक जो इन्होंने जितने भी गेम्स खेले थे उसमें इन्होंने सिर्फ एक सेट जो था वो हारा था। ये जो 10 टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन थे नोवैक से भी इतनी जबरदस्त इनकी गेम थी और अपने जो पिछले 11 मैचेस खेले हैं इन्होंने उसमें से 10 इन्होंने जीते हैं और ये तमाम के तमाम मैचेस जो थे जो टेनिस के जो टॉप 5 प्लेयर्स थे उनके साथ थे।
एवरीबॉडी टुक हिम वेरी लाइटली। ये तो कोई बच्चा सा है इसको मार
दिया। हाँ। मगर क्या उसकी फिजीक है और क्या हाइट है और क्या उसका जो टेक्निक आप देख रहे थे मजे से कि कैसे वो ईज के साथ खेल रहा था, लग रहा था कि इस पीस ऑफ केक है, कोई मसला ही नहीं है, ऐसे मार रहा था उसको वो जो है इसको रशियन को। हालांकि वो रशियन भी बड़ा तगड़ा था लेकिन वाह जब 2 सेट्स इसने हारे ना मैंने कहा बस गया उनका का। बट माई गॉड वॉट रेजिलियंस ही शोड एंड केम बैक। एंड जनाब क्रांची के अंदर जहां पे एक तरफ कतलों गारत और लड़ाई थे, झगड़े एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे थे और तप्पड़ मुखियां हो रही थी, दूसरी तरफ दो बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स भी चल रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर द फर्स्ट एवर इंटरनेशनली सर्टिफाइड मैराथन जो है वो की गई, वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड मैराथन, जिसका के लेवल वही है जो कि आप देखते हैं दुबई में या पेरिस में या लंदन में या न्यूयॉर्क में, वैसे स्टैंडर्ड का। मतलब है इन्होंने पाकिस्तान में ना मतलब दो नंबर कंट्री समझा है पायन, व्हाट इज दिस। कराची के अंदर जनाब ये वर्ल्ड लेवल की हुई है मैराथन और यहां पे जो मर्द थे उनके लिए 42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो इन्होंने कवर करना था, और विमेन जो थी उनके लिए 21.1 किलोमीटर का था। सीईओ ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं इन पाकिस्तान शोएब निजाम, उन्होंने कहा जी कि पिछले 8 से 10 साल में पाकिस्तान के अंदर भी मैराथन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट हो गया है, लिहाजा हमने ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी लार्ज तादाद में लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, एक एनजीओ जो है आहंग, उसने भी एक बाइकाथॉन अरेंज किया हुआ था कराची के अंदर, जिसमें बेशुमार लड़कियों ने जो है वो कहती हैं जी वो लड़कियां निकल दिया नहीं करो, साइकिल चलाई उन्होंने जनाब, साइकिल चलाई, कोई 120 साइकिलिस्ट जो थी उसके अंदर, वैसे आदमी भी कुछ थे, उन्होंने जनाब होटल जो है मेट्रोपोल शाहराए फैसल पे वहां से लेके बाग इब्ने कासिम जो है सी व्यू पे वहां तक जो है साइकिलें चलाई, जिसमें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, इसने कहा जी कि इसमें काफी लोग हमसे बात करते रहे कि ये आपने साइक्लाथॉन क्यों निकाला है, तो हम उनको रास्ते में पैम्फलेट्स देते जा रहे थे और उनको बता रहे थे कि विमेन के खिलाफ जो हैरेसमेंट के केसेस मुल्क में बहुत बढ़ते जा रहे हैं स्पेसिफिकली कराची के अंदर, तो उसके खिलाफ हमको काम करने की जरूरत है। तो इसमें भी काफी लोगों ने दिखाई एंथुजियाज्म और काफी बड़ी तादाद में बड़ी ही हसीन खवातीन इसमें देखी गई, मैंने भी देखा इसका छोटा सा एक टुकड़ा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाकिस्तान को नजरे बद से, बहुत बद नजर बैठे हैं आज पर, क्या करें अब मासूम पाकिस्तान। एंड जनाब आईसीसी ने लिफ्ट किया है बैन श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर, आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर ये जो है बैन लगाया था, ये कहते हुए कि पोलिटिकल मेडलिंग जो है बहुत ज्यादा होती है और बोर्ड जो है उसको इससे ऊपर होना चाहिए, और इन्होंने सस्पेंड किया था वर्ल्ड कप 2023 ऑन नवंबर 10, 2023 में, और उन्होंने कहा था जी कि आपको जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी नहीं आएंगी और आप ये जो अनोमलीज हैं इनको खत्म नहीं करेंगे और ऑटोनोमसली इसको मैनेज नहीं करेंगे अपने क्रिकेट बोर्ड को, आपको जो है सस्पेंडेड रखा जाएगा। उसके बाद जो है काफी सारे इन्होंने गवर्नर्स और रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो लिए थे, मेजर्स लिए थे, तो ये किया। लेकिन अब ये बैन जो है ये उठाया गया बड़ा लेट हो गया, क्योंकि इनके मुल्क में यानी कि श्रीलंका में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था, तो इनसे फिर राइट्स ले लिए गए थे होस्टिंग के, ये मैचेस जो हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहे हैं। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज टुडे इज अबाउट इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को खींचा है आज आईसीसी ने फॉर इन अप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इंग्लैंड ओली पोप, जब इनको जो है इंग्लैंड ने 28 रन की टेस्ट डिफीट दी ओवर दिस वीकेंड। हुआ यह कि ये इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स चल रही थी और ये बॉलिंग कर रहे थे, जबकि डिलिबरेटली इन्होंने स्टेप किया ओली पोप के रास्ते में जब वो जो है रन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया पोप की बॉडी को। पोप जो है उसने 196 रन बनाए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है इंडिया को हरा सका, और जब इनसे पूछा गया आईसीसी ने इनको बुला के, तो बुमराह ने एडमिट किया कि उससे ऑफेंस हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उनके ऊपर अब सैंक्शन लगाई गई है और उनको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया है जो उनके डिसिप्लिन रिकॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो होती हैं इस तरह के ब्रीचेस जो होते हैं वो जरा थोड़े से माइनर होते हैं, तो अगर मिनिमम पेनल्टी दी जाए तो उनको रेप्रमांड किया जाता है, या मैक्सिमम अगर दी जाए तो 50% ऑफ मैच फी ली जाती है, या 1 to 2 डिमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जो कि अब इनके बुमराह के केस में दो चीजें की गई हैं, तो इनको रेप्रमांड यानी कि इनको अब डांटा गया बुला के, और इनको 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। बुमराह ने तबाही किस्म की ये जो टेस्ट चल रहा है उसमें इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इसने बॉलिंग की और इस टेस्ट के अंदर भी ये जो था इसमें 6 विकेटें इसने ली थी, तो लीडिंग इनका विकेट टेकर है ये बुमराह, वेरी वेरी ब्रिलियंट, ब्राइट, वेरी ब्राइट स्टार जो है इंडिया की बॉलिंग,
और बहुत है उनके पास,
हाँ बेशुमार
बेशुमार
मुंडे मुंडे।
ये थी हमारी आज की न्यूज, बकिया की न्यूज, इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाजत,
ठीक है माई फ्रेंड, इंशाल्लाह अगर इफ आई एम नॉट सिक टुमारो, क्योंकि कल महीने का आखिर है ना, मेरी तबीयत खराब हो सकती है,
हो सकती है,
हाँ 31st है ना कल, तो नहीं कल
नहीं, हमने पहले से डॉक्टर का
30th है, अच्छा
इंतजाम कर लिया हमने,
कर लिया,
हाँ जी हाँ,
अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो
फिर आना ही पड़ेगा, अच्छा
अच्छा
इंतजाम कर,
डॉक्टर को बुला के रखो,
हाँ
2 दिन बस रहे,
अलर्ट अलर्ट अलर्ट,
अच्छा हाई अलर्ट पे, रेड अलर्ट पे,
रेड अलर्ट पे, पूरा पूरा का पूरा स्टाफ रेड अलर्ट पे,
अच्छा जी ठीक है, ओके जी मजदूर, इंशाल्लाह सी यू टुमारो,
बाकी की बातें कल इंशाल्लाह ताला कल, और अब मैं ले चलता हूँ आपको जीशान अहमद की जानेब, वैसे तो आप 24 आवर्स हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, सुनते रहिए ऐसे ही, देखते रहिए www.eawaz.com पे जाके, एंड बाकी की बातें कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज।
मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल, महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी, तुमको चाह के तुम बिन जाऊँ कहाँ, जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुम तो चाह के जा जा। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 आजा। रखना था दिल पे हमारे, हाथ छुड़ा के चली हो। प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मसीह में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया,
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मसीह में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मसीह में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे सो मैंने मन जलाया, मिली पलकों की सब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया।
Thank you.
नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मुहे संभाल।
एक